देखिए हम नमाजी हैं, मैं भी नमाजी, आप भी नमाजी, हमारा गुमान है कि हमारा पूरा मुआशरा नमाजें पढ़ने वाला मुआशरा है। आप बताइए कि जब एक औरत नमाज पढ़ती है तो क्या वो अपने जिस्म की सरेआम नुमाइश कर सकती है? उनको तो पैसे मिलते हैं, उनका तो शो बिजनेस है, हमें क्या मिलता है? आज उम्मते मुस्लिमा की बहू बेटियों के जो कपड़े और जो ड्रेस अल्लाह अकबर जो नजरों में पड़ते हैं देखते हुए, मैं नहीं कह सकती कि आज से 20 साल पहले कोई अपने घर के अंदर भी पहनता था। ये बेडरूम ड्रेसेस तो हो सकते थे, वो क्यूलॉट्स कह लीजिए, वो टाइट्स कह लीजिए, वो आप नाइटीज कह लीजिए, नाइटी लव्स के साथ ही शर्म से सर झुक जाता था। स्लीवलेस लव्स सुनकर ऐसे लगता था कि पसीने आने लग गए। आज उम्मत की बहू बेटियां कहाँ फिर रही हैं? आप सब ऐसे नहीं होंगे, लेकिन क्या आपकी नजरें नहीं देखती? और जो हमारे ड्राइवर्स, अल्लाह माफ करे, गर्मियों में जो लॉन के पतले कपड़ों में जो वो देखते होंगे, आप मुझे बताएं कि क्या फिर इज्जतें महफूज रहती हैं? क्या नमाज पढ़ने वाली सोसाइटी ऐसी होती है? हम सब नमाजों का प्रचार करते हैं, लेकिन क्या हमारी अमली जिंदगी में नमाज का असर दिखता? ये तो ऐसी है कि दवा खा रहे हैं, असर कोई नहीं हो रहा। खाना खा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा। बच्चे को फुल फूड दे रहे हैं, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा। नमाजें पढ़ने वाली सोसाइटी ऐसी नहीं होती, माफ कीजिएगा। दैट मीन के ये मुर्दा नमाजें हैं। असर फर्क क्या है? मैं खराबियां खोलती जाऊंगी, 10 और भी खोल दूंगी। रिश्वत देख लीजिए, नमाजी सोसाइटी में इतनी रिश्वत नहीं हो सकती। सूद का बाजार गर्म हो ही नहीं सकता जिस सोसाइटी में नमाज हो, क्योंकि नमाज तो एक अहदो पैमान है। आप देखिए, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, आप कह रहे होते हैं कि अल्लाह सारी दुनिया मेरे पीछे और तू मेरे आगे, और तू सबसे बड़ा बाकी छोटे। सूरत फातिहा क्या है? अल्लाह के साथ मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। आप इसका तर्जमा पढ़ें, इसकी सिर्फ तफसीर सुन लें, आपको पता चलेगा ये लव स्टोरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, कसम तो सलात तो बैनी व बैना अब्दी, मैंने नमाज को या सूरत फातिहा को अपने और अपने बंदे के बीच में बांट लिया। मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ऊपर से जवाब देता है हमदनी अब्दी। इधर से सवाल होता है, उधर से जवाब आता है, एक कॉन्वर्सेशन है। कब नमाज में हमारी ये कॉन्वर्सेशन हुई? सोचने की बात है। मेरे आपके लिए ये नुक्ता है, बात है। आप देखिए कि हम सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आज के बाद हमने अपनी नमाज को इस एंगल से देखना है कि इसके पढ़ने के बाद मेरे दिल की हालत बदली कि ना बदली। सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है ना, नमाजों का जो असर नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि हमारी नमाज है ही नहीं ठीक। फिकी वैसे तो इतनी कि हाथ ऊपर और हाथ नीचे, रफुल जदैन करो कि ना करो, आमीन ऊंची करो कि नीची, इस पे तो उम्मत 4-6 टुकड़ों में बटी पड़ी है और इससे भी ज्यादा। उस पे तो मस्जिदें अलग, उस पे तो फतवे अलग, उस पे तो इमाम अलग है, कोई मानने को किसी की तैयार नहीं है। जाहरी नमाज पे जिस तरह बात करेंगे ना, सल्लु कमा राई तुमूनी उसल्ली, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। इसी तरह याद रखिए, नमाज का एक बातनी रुख भी होता है, अंदर का रुख। जैसे ये देखिए, ये माइक आपको मेरे हाथ में दिख रहा है ना, एक इसकी जाहरी शक्ल है। ये मोटा भी हो सकता था, ये काला भी है, ये सिल्वर हो जाता, ये नीला होता, इट्स फाइन। बट अंदर जो बिजली के तार पीछे से जुड़े हैं, जो मेरी आवाज आप तक पहुंचा रही है ना, वो क्या है? वो इसके अंदर के तारों का सिस्टम है। बिल्कुल इसी तरह नमाज की जाहरी हालत है, क्याम, रुकू, सजदा, तशहुद, सलाम फेरना, उसके बाद ये सब कुछ। लेकिन जो असल में नमाज की रूह है ना, वो क्या है? खुशू। आज वो नहीं है। नमाज पढ़ने वाले को नहीं पता कि हम क्या पढ़े। देखिए, आपकी फोन कॉल मिली हो, किसी को पता चल रहा है कि आप उसके सामने बातें कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर करा के 15-20 मिनट बाद फोन बंद करें और कोई पूछे किससे बात हो रही थी, नहीं पता। क्या बात हो रही थी, नहीं पता। उन्होंने क्या कहा, नहीं पता। या पता तो है सब कुछ, लेकिन वो कुछ करना नहीं है। फायदा होगा उस कॉल का? नमाज आपकी मेरी अल्लाह से डायरेक्ट कॉल मिलती है। अल्लाह ताला नमाज के बारे में तो कहते हैं कूमु लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के आगे खुशू और खुदू के साथ खड़े हो जाओ। सहाबे करम का यह हाल होता था कि नमाज पढ़ने से पहले उनकी चेहरे की हालत बदलती थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किसी ने पॉइंट आउट किया था कि हम एक चीज नोट करते हैं कि जो ही अगली नमाज का वक्त करीब आता है, आपका रंग जर्द हो जाता है। तो कहने लगे, तुमने ठीक नोट किया। क्यों भाई? कहा, इसलिए कि मुझे यह एहसास शुरू हो जाता है बहुत बड़े मालिक के दर पे खड़ा होने वाला हूं। जैसे किसी अफसर के पास जाना हो, किसी पुलिस वाले के सामने खड़ा होना पड़े, तो खौफ तो होता ही है ना। तो वो कहते थे कि मेरे दिल में खौफ आने लगता है कि मैं अपने मालिक के सामने जा रहा हूँ। इसी तरह एक सहाबी के बारे में आपने सुना होगा कि जंग में उनको तीर लग गया, और जब वो हड्डी में फंसा हुआ तीर निकालना चाहते हैं तो दर्द इतनी है कि निकलता नहीं है। इतने में नमाज का वक्त हुआ तो कहते हैं कि लोगों, मैं जब नमाज में होता हूँ ना तो मुझे होश नहीं इतना रहता, उस वक्त कोशिश कर लेना, शायद कम दर्द हो। कहा ठीक है। नमाज शुरू की और उस बंदे ने नमाज पढ़ ली, सलाम फेर कर कहते हैं, मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका दिया था, तुमने मेरा तीर क्यों ना निकाला। कहा आप क्या बात करते हैं, वो तो पहले रुकू में निकाल लिया था। कुमुलिल्लाहि खानितीन। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते, वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन। ये नमाज है बड़ी बोझल, है बड़ी भारी, बट खुशू करने वालों के लिए भारी नहीं है। तो असल में जो चीज है ना, वो कैफियत नमाज है। देखिए, असली गोली खाएंगे तो सेहत मिलनी चाहिए, लेकिन आपको कोई ग्लूकोज की गोली को डिस्प्रिन, एस्प्रिन या जो भी टाइलनॉल जो आप खाते हैं उसका नाम दे दे, असर करेगी? आज हमारी नमाजें असली नमाजें नहीं है, वो जाली हैं, वो फ्लूटेड हैं, उसमें मिलावट पड़ी है। आज इस पे तो बहुत वीडियोस बन गई कि दवाइयाँ भी जाली, खाने भी जाली, दूध भी जाली, और सब कुछ ही जाली बनता है इधर। लेकिन क्या मेरी आपकी नमाज हमारे दिल पे असर करती है? और याद रखिए, दीन के अमली अरकान में से सबसे अहम रुकन नमाज है। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब इबादात में से नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हो गई तो वो ठीक हो जाएगी। और नमाज का खुशू जो है ना, असल में इसकी रूह है। नमाज पढ़ते वक्त कैफियत क्या हो? और याद रखिए कि सबसे पहले दिन ही शैतान ने जो वादा किया था ना कि मैं बनी आदम को गुमराह करूंगा, अल्लाह ताला ने उसके क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? सूरत अल अराफ की आयत 17 में आता है, सुम्म लातियन्नहुम मिन बैन यदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। फिर मैं लाजमन इनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और हर तरफ से इनको घेरूंगा। अब ये एक तो डायरेक्शंस है ना, लेकिन असल मुराद के हर मुमकिन वसीला इस्तेमाल करूंगा, मींस यूज करूंगा, ताकि बंदा अल्लाह के रास्ते से रुके। और आप आजमा के देखिएगा, आज के बाद अगर कभी नहीं आजमाया तो। सब बच्चे खेल रहे होंगे इधर उधर, आप जूं ही नमाज पढ़ेंगे बच्चे आपके आगे से गुजरेंगे, आपके इर्द गिर्द यूं चक्कर बना लेंगे। इन मासूम बच्चों को क्या लगे? ये तो खुद ही अभी दो तीन बहन भाई मिलके खेल रहे थे, लेकिन नमाज के आगे से बच्चे क्यों गुजरते हैं? आपको याद होगा कि हम लोग भी गुजरते थे। ये शैतान लेकर आता है। हदीस में आता है कि जब एक इंसान वुजू करने लगता है ना, तो शैतान उसी वक्त से कोशिशों में आ जाता है। लेकिन बंदा वुजू कर ही लेता है, उसके गुनाह झड़ जाते हैं, फिर अजान की आवाज़ सुनता है तो शैतान फिर दूर भागता है, फिर वापस आता है, फिर इकामत सुन के फिर भाग जाता है, फिर इकामत के बाद जूं ही नमाजी नमाज शुरू करता है तो फौरन शैतान आकर उसके अंदर खलल डालता है। नमाज में इंसान का खुशू होना असल में इस बात की गारंटी है कि मैं अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ रहा हूँ। और आप देखिए कि अपने ऊपर लें, यह कोई दूर जाने वाली तो बात ही नहीं। एक नमाज पढ़ी थी, दूसरी आप पढ़ेंगे। बस इस नमाज में जो अभी आप इसके बाद पढ़ें, सोचिए क्या कह रही हूँ, किसके सामने खड़ी हो, कौन है पूरी दुनिया का मालिक? लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध। आप देखिए, किसी अपने से जरा से बड़े, लोग कहते हैं ना बड़े आदमी, मुझे नहीं समझ आता वो बड़े कैसे होते हैं, बड़े लोग, वो बड़े लोग पता नहीं कद तो उनके हमारे जैसे होते हैं, लेकिन हम लोगों को बड़े लोग कहते हैं, करोड़पति, लाखपति, अरबपति, खरबपति, नजरें ही झुकने लगती हैं उनके सामने, जाएं तो सीने से हाथ ही नहीं हटता। तो वो खरब पतियों को खरब पति बनाने वाली जात के सामने जाकर क्या हम बाल समेटेंगे, दाढ़ी के बालों से खेलेंगे? और जो भूली बिसरी उसमें याद आएगी। आप देखिएगा, जो भूली बिसरी बातें नमाज में याद आती हैं, चाहे भी कहाँ रखी कहाँ नहीं रखी, नमाज में याद आएगा। बाद जो सलाम फेरें तो भूल भी जाएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है एक इंसान की। अल्लाह के नबी ने खबर दे दी थी, हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कॉल है, वो कहते हैं कि सबसे पहले दीन में से खुशू ख़त्म हो जाएगा और सबसे आखिर में नमाज, यानी एक वक्त आएगा लोग नमाज भी छोड़ देंगे, हत्ता कि एक एक भी ऐसा नमाजी नहीं दिखेगा जिसमें भलाई हो। और वो वक्त दूर नहीं कि जब तुम मस्जिदों में जाओ और एक आदमी भी खुशू के साथ नमाज पढ़ने वाला ना मिले। तो नमाज के बारे में इंसान को बहुत फिक्र लगनी चाहिए। आप देखिए कि ये चीज़ ऐसी है कि बचपन से हम पढ़ते हैं और मरने से आखिरी घड़ियां जो हमारी होंगी उस वक्त तक नमाज हम पर लाजिम है। अल्लाह ताला तो इतने शद्दो मत से सूरत मोमिनून में फरमाते हैं, कद अफलहल मोमिनून, तहकीक फलाह पा गए ईमान वाले। वो कौन है? الذين هم في صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. ان آیتوں کی تفسیر میں ایک لیکچر ہے جنت کے وارث, اس میں بڑی ڈیٹیل سے نماز میں خشوع کیسے کیا جائے اس کی بات کی گئی. اگر آپ سننا چاہیں تو آپ ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں, لیکن یہ بات سچ ہے کہ نماز ہمارے دین کا خلاصہ ہے. اور آخر میں انہیں آیتوں میں کیا آتا ہے, یحافظون, پہلے خشوع ہے پھر حفاظت ہے. ہم بعض دفعہ نماز کے نام پہ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن نماز کی اندر ہماری روح ٹھیک نہیں ہوتی, اور چونکہ نمازیں ٹھیک نہیں ہیں تو سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے. آج ہماری آوازیں کیوں اوپر نہیں اٹھتی؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں, شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں, یا ہم نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں بار یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ڈرائیور گاڑیوں میں پیٹرول ڈالتے ہیں, شوہر ڈالتے ہیں. جب گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے تو اس کے بعد گاڑی چلتی ہے نا. اگر آپ گاڑی میں پیٹرول تو ڈال دیں اور اس کو چلائیں نہ, تو کیا ہوگا؟ اس کا پیٹرول کم نہیں ہوگا, گاڑی کھڑی رہے گی, زنگ لگے گا, تھوڑے دن بعد بیٹری خراب ہوگی, اور 2-3 مہینے گاڑی کھڑی رہی تو کہتے ہیں ویسے ضائع ہو جائے گی. پھر جب چلانا جائیں گے تو ہو سکتا ہے دھکا دینا پڑے, جمپ اسٹارٹ کرنا پڑے. یہ بات تو اتنی سمجھ آتی ہے نا. جب کسی گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ آخری باتیں اور بڑی اہم باتیں ہیں جو ہماری آج کی اس نشست کی ہیں. جس اینگل کو اگر آپ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گی کہ میرے اس موضوع کو چھیڑنے کا کچھ فائدہ ہوگا. گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں تاکہ ہم بھاگیں, چلیں, کام کریں, مسجد میں جائیں, شاپنگ کر کے آئیں لوگ, اور بچوں کو اسکول سے لے کر آئیں اور مسجدوں میں جائیں. یعنی ہمارے سارے دن کی مختلف جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ گاڑی میں پیٹرول ڈالا ہوا تو چل رہی ہیں. اب جب پیٹرول ڈل جاتا ہے تو گاڑی کو پھر چلنا ہوتا ہے. اسی طرح سے یاد رکھیے, نماز پڑھ کر اصل میں ہم اپنے اندر ایمان کا پیٹرول ڈالتے ہیں. ایمان کی گیس, ایمان کی انرجی, طاقت, جو بھی CNG کہہ لیں, ہمارے اندر ایمان بھرتا ہے. اب نماز پڑھ لی, اب کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں اور کیا کریں. کئی لوگ اتنے بھولے ہیں, وہ کہتے ہیں نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں, اب آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں؟ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نمازیں آپ کو دوڑائیں. ففروا الی اللہ, السابقون الاولون, بھاگ دوڑ. اللہ یہ نماز پڑھوا کر ہمارے اندر اتنا ایمان بھر دیتے ہیں کہ یہ ایمان پھر ہمیں گھر بیٹھنے ہی نہیں دیتا, یہ ایمان پھر ہمیں وقت ضائع نہیں کرنے دیتا, یہ ایمان ہمارے مال کو ہماری ہی اپنی ذاتی پسند ناپسند اور خرافات میں لگانے نہیں دیتا. بندہ اللہ کے راستوں میں بھاگتا ہے, اسائے خون اور اسائے خات بن کے. جب جتنا آپ نماز کے بعد اللہ کی مرضی کے کام زیادہ کریں گے, وہ ایمان کا پیٹرول کم ہوگا. جیسے گاڑی چلے گی تو پیٹرول کم ہوگا نا, دوبارہ کب ڈلواتے ہیں؟ جب پچھلا کم ہو جاتا ہے. جو زیادہ گاڑی چلاتا ہے اس کا پیٹرول زیادہ چلتا ہے. ایک گاڑی ہے سیم کیفیت کی, آپ مثال لے لیجئے, سیم برانڈ نیو گاڑی, تین دوستوں کی بات کر لے, تین دوستوں نے اکٹھے پیٹرول پمپ پہ گاڑی فل کروائی, سیم مائلیج, سب کچھ سیم لیتی ہے. ایک مہینے بعد دوبارہ ملے, سناؤ بھائی کیسے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں جب پچھلی دفعہ ملے تھے نا اس کے بعد آج پہلی دفعہ آیا ہوں ادھر پیٹرول لینے. کیا مطلب؟ وہ جو ایک مہینہ پہلے پیٹرول ڈلوایا تھا وہی تمہاری گاڑی میں چلتا رہا؟ اس نے کہا ہاں. دوسرا کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو 15 دن بعد آیا تھا اور آج دوسری بار آیا ہوں. اور جو تیسرا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تو ہر ہفتے آتا تھا, میں تو اس کے بعد چوتھی دفعہ آیا ہوں. فرق کس بات کا؟ بہت آبویس ہے کہ پہلے نے گاڑی کم چلائی. ہو سکتا ہے گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, یا گھر سے جاب, جاب سے گھر پہ آیا, گاڑی کم چلی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسرے نے اس کی نسبت زیادہ چلائی, تیسرے نے بہت چلائی. اب آئیے ادھر واپس, کچھ لوگ ہیں ان کا دل ہی لگتا ہے نمازوں میں, مسجدوں میں. وہ تو مسجدوں کی میخیں ہیں کہ جو نہ جائیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہوں گے کہ بھائی تم کدھر ہو, تمہارا نام تو ہمیں مسجدوں میں دکھ رہا ہے اس وقت, ہے نا. جو لوگ ایک دفعہ نماز پڑھ کر اس سے نیکیوں میں بھاگتے دوڑتے ہیں نا, تو ان کی وہ پیٹرول نماز کی صورت میں جو ملا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, تو وہ دوبارہ اگلی نماز کے لیے تیار ہے. دو جملے اکثر لوگ بولتے ہیں, دل نہیں لگتا, قرآن کلاس میں جاتے ہیں نا نیند آنے لگتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک مہینے میں جاتی ہوں میں, بس وہ مہینہ بار درس میں جاتی ہوں. کچھ نے ہم میں سے ماشاءاللہ پچھلے 20-25 سال سے ہفتہ بار کلاس پکڑی ہوئی ہے, ہر ہفتے ایک کلاس ہوتی ہے. پھر کھانا تو اب دن میں 3 بار کھاتے ہیں, تو قرآن ایک بار کیوں؟ وجہ کیا؟ پچھلا ہضم نہیں ہوتا. پچھلا کھانا ہضم نہ ہونا تو آگے سے کھانے کو دل نہیں کرتا, یہ آپ سب جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. پچھلا ایمان اور پچھلا علم ہضم ہو جاتا ہے نا جب, تو اور لینے کو دل کرتا ہے. ये है छोटी सी बात। आपके मेरे में से कुछ लोग हैं जिनका दिल ही हर वक्त इन्हीं चीजों में रहता है। आप में से कई ऐसे साथी होंगे, सुबह में भी कुछ सीखते सिखाते हैं, शाम को भी सीखते हैं। हर दिन ये थर्स्ट एक प्यास लेकर उठते हैं कि हाय इतनी जल्दी क्लास का वक्त खत्म हो गया, कल क्या होगा, है जल्दी करें। इंतजार, जैसे कुछ लोगों को ड्रामे का इंतजार होता है, इस तरह कुछ लोगों को कुरान क्लास का इंतजार होता है ना। फर्क किस बात का है कि जो यहां से मिलता है उसको लेके चलना का है। तो हम जरा अपनी सोसाइटी को तो देखें, यकीन करें उम्मत प्यारी बहुत है, और पाकिस्तान कौम सबसे प्यारी कौम लगती है मुझे दुनिया में, शायद अपनाइत की वजह से। लेकिन इस वक्त एक गुमशुदा भेड़ की तरह इधर से उधर है। 10 लोगों को चूज करें, मैं आप सबको एक छोटी सी एक्टिविटी देती हूँ। 10 लोग कौन से, डिफरेंट कम्युनिटीज के। एक यंग बच्चा ले लें, कोई लड़की एक बिठा लें, किसी अंकल से पूछ लें, आंटी से पूछ लें, किसी पढ़े लिखे से अनपढ़, 10 लोगों से पूछिए कि उम्मत होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है। यानी आप पूछें कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। हो सकता है आपका हाल हुलिया देख कर वो समझ जाए कि ये कोई मौलवी टाइप बंदा है या ये कोई दर्स वाली है, तो क्या कहेंगे, इबादत के लिए। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सूरह ज़ारियात की आयत सबको आती है जी, कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप कहते हैं कि इबादत के लिए तो इंसानियत को पैदा किया है, उम्मत मुस्लिमा को क्यों पैदा किया। अब इसका कोई जवाब नहीं। जैसे किसी की बात याद आती है, नमाजें हम पढ़ते हैं, रोजे हम रखते हैं, हर साल उम्रा हम करते हैं, और हम क्या करें। देखिए अब ये बहुत अहम बात है, आप नमाजें पढ़ते हैं ना, किसके लिए पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। आपने रोजा रखा, कौन जहन्नम की आग से दूर हुआ, आप हुए। आपने जकात दी, अपना फर्ज पूरा किया, नहीं देंगे तो वो कंस बन के एक सांप की सूरत में आएगा ना। आपने मैंने इस्लाम के लिए क्या किया, आपने मैंने दीन के लिए क्या किया। सवाल यह है आज मेरा आपसे और आपका मुझसे होगा कि दीन हमसे किस बात का तकाजा करता है, अल्लाह के दीन को मैं क्या फायदा दे रही हूं। हम नमाजें पढ़ के, दुआएं पढ़ के, अजकार करके, कुरान का आधा सुपारा पढ़ के कहते हैं शुक्र है आज का कोटा पूरा हुआ, चलो अब बाजार चलते हैं, चलो अब खाना पकाते हैं, चलो अब रात को शादी में जाना है, परसों ये होना है वो होना है। हम ये सोचते हैं कि थोड़ी सी इबादत की पूंजी जमा करके एक डब्बे में डाल के अल्लाह को खुश कर दिया कि बस अल्लाह तेरा हक इतने, बस इतना ये माफ कर, बाकी दुनिया मेरी। आप देखिए कि नमाजें पढ़ने के बाद एक ऐसी सोच पैदा हो जानी चाहिए कि हमें कुछ करना है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ दीनदार लोग भी दीन सिर्फ नमाजें पढ़ने को कहते हैं, बाकी चीजें उसके अंडर खुद ही आ जाएंगी, मैं सबका जिक्र नहीं करती। नमाज पढ़ के अभी अजान हुई, आपने गौर किया था कितने लोग हैं जो अजान के अल्फाज पे गौर कर रहे थे। दो चीजें इकट्ठी है अलसला और हय अल फला, कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। क्या पता चला, नमाज दुनिया में भी कामयाब कराती है। सारा दिन लोग पीछे भागते हैं कामयाबी के, पढ़ने गए तो कामयाबी के लिए, जॉब पे मियाँ गए तो कामयाबी के लिए। आप देखिए ना कि हर बंदा अपनी फील्ड में कामयाबी होना चाहता है ना, लेकिन उसका रास्ता नमाज था। आप वो काम जो नमाज छोड़ के कर रहे हैं ना, उसमें कभी बरकत नहीं होगी। जब आप 5 वक्त की नमाज के बाद अपने अंदर ये फीलिंग लेके आएंगे ना कि ये नमाज मुझे कुछ करने की दावत दे रही है, तो आप देखेंगे तो फिर हमारे सारे रिसोर्सेस, हमारा सारा अल्लाह ने जो हमें माल असबाब दिया, हमें ताकत दी, हमारी औलाद, हमारे शौहर और हमारे खूबसूरत घर, ये ऐसे पेश होंगे कि अल्लाह इनको कबूल कर ले। जैसे अबू बकर सिद्दीक नमाजें नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे ना। आप मुझे बताइए, मैं आपसे चंद सवाल करती हूँ जिससे शायद सोच दे सकूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो कितने सहाबा थे, आपको फिगर नहीं पता तो मैं रफ बता सकती हूँ, 1 लाख से ऊपर सहाबा कराम थे। उसकी एक निशानी तो यही है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरतुल विदा के मौके पे बात की थी, तो एक आम मारूफ बात है कि 1,24,000 या इसके करीब थे। लाखों सहाबा थे ना, बड़े गौर से सुनने की बात है, नबी सल्लम की मौजूदगी में भी लाखों सहाबा कराम थे, बट सहाबा कराम की लिस्टें खोल के देखिए कितने नाम आते हैं, 100 कुछ। आप रही को मख्तूम खोल लें, सीरत की बुक्स खोल लें, सहाबा की जिंदगियों पे लिखी हुई बुक्स पढ़ लीजिए, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, हयात सहाबा के दरख्शां पहलू और इस तरह। सौ सवा सौ सहाबा के नाम सिर्फ किताबों में आते हैं। फर्क किस बात का था ये नोट कीजिएगा, वो लाखों सहाबा कराम नमाज रोजा करते थे, ये तो तसव्वुर ही नहीं है कि वो नमाज ना पढ़ते हो, बट ये 100 कुछ लोगों ने दीन के लिए कुछ किया था। ये असाबिकून अलव्वलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह कहते हैं लकद रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन ज़ालिक लिमन खशी या रब्बा। दीन के लिए कुछ करना और चीज़ है और नमाजें पढ़ना बिल्कुल और चीज़ है। जो लोग नमाजें पढ़ पढ़ा के दुनिया से जाएंगे ना, वो इंशाल्लाह जहन्नमी होने से बच जाएंगे। ये मैं आपको अब थोड़ा सा एक गोल दे के जा रही हूँ। दो तरह की जिंदगी है आज भी दुनिया में, एक वो लोग हैं जो फराइज की सतह पे जीते हैं, फराइज वही नमाज रोजा हज जकात, फराइज पूरे किए, अल्लाह के नबी की खुशखबरी भी है कि वो औरत जो नमाज रोजे का अहतमाम करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने शोहर को खुश करे, वो जन्नत के किसी दरवाजे से भी जाएगी। सुनी भी है ना हदीस, मैं तो ऐसी कोट किया ना, सही हदीस आपने सुनी होगी ना। जन्नत में जाना इट्स नॉट अ बिग डील, हालांकि वो भी बड़ी डील है। मुसलमान होकर पांच नमाजें पढ़ के, फराइज का पाबंद होके, हराम हलाल का फर्क करके, हर बंदा इंशाल्लाह जन्नत में जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अब यहाँ वो लोग जो दुनिया में स्टेटस कॉन्शियस हैं, मैं आज की जुबान में लफ्ज बोलती हूँ, जो ब्रांड कॉन्शियस हैं, जो क्लास सिस्टम, किस क्लास की इकोनॉमी के, बिजनेस क्लास के, हाई क्लास, फाइव स्टार, फिफ्थ स्टार, सिक्स स्टार, किस दर्जे का होटल, आप समझ गए होंगे ना कि क्या स्टैंडर्ड। जो लोग स्टैंडर्ड कॉन्शियस हैं उनके लिए ये बात बहुत अहम है। जन्नत का आम दर्जा सबको मिल जाएगा। सूरत वाक्या को लीजिए, असहाबुल यमीन, बहुत अल्लाह कहते हैं कसीरु मिनल अव्वलीन और कसीरु मिनल आखरीन, अगलों में भी बहुत है, बाद वालों में भी बहुत है। बट जो असल मसला है ना, जन्नत के आला दर्जे, और हदीस में आता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और वो 100 दर्जे मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह को मिलेंगे। ये दर्जे जो मिलते हैं ना, जिसको आप जन्नतुल फिरदौस कहें, जन्नत नाइम कहें, और जिस जन्नत की तलब में सहाबा कराम ने अपनी जिंदगियां खपा दी, ये अल्लाह के रास्ते में नमाजें पढ़ने के बाद उसके दीन को फैलाने, दीन को अपना गम बनाने वालों को मिलेंगे, जिनका हम और गम और शौक और अरमान और तमन्नाएं अल्लाह का दीन, अल्लाह के बंदे समर जाएं, अल्लाह का दीन फैल जाए, दुनिया से करप्शन चली जाए, दुनिया से बेहयाई चली जाए, इस प्यार पे रखिए। तो हमने इसको चंद नामों में रख दिया, तबलीगी जमात। हाँ, ये तबलीग कर रहे हैं ना, जमात इस्लामी, ये अच्छे नामों के साथ बोल रही हूँ। आज हमारे दिन में ये दीन का काम कौन करते, वो कर रही है ना तबलीगी जमात, और एक अल हुदा का नाम है, और भी इस तरह के चंद नाम होंगे। क्या सिर्फ इन चार नामों ने जन्नत के आला दर्जों में जाना है? क्या मैं आप सिर्फ ग्राउंड पे रहेंगे? जिसको जन्नत के आला दर्जे चाहिए उसको ये आज की बात फायदा देगी कि आपकी मेरी नमाज मुझसे आपसे ये तकाजा करती है कि अपनी जिंदगी की हर नेमत को अल्लाह के रास्तों में लगाओ। वल्ला ही हम अल्लाह के रास्तों में बहुत देते हैं। मुझे पता है आप में से हजारों लाखों नहीं करोड़ों देने वाले भी इधर बैठे होंगे। ये बात नहीं है कि आपने करोड़ों दिया कि लाखों दिया कि हजारों दिया, सवाल ये कि उसके बाद पीछे आपके क्या पड़ा हुआ है। और जिसके पास है ही करोड़ों, वो एक करोड़ दे दे तो क्या बड़ी बात है? जिसका चेक हर रोज साइन किया जाता है और कभी वो 1 लाख का ज्वेलर को चेक जा रहा है और 10-20-25 हजार का बुतीक को जा रहा है, तो अगर वो 50 हजार का चेक मदरसे के नाम लिख दे, इट्स ओके, अल्लाह कबूल करेगा। मसला ये नहीं है कि आप में कितना दे रहे हैं, और एक बंदा जिसके पास है ही चंद हजार, तो वो तो 500 का भी चेक लिख दे तो अल्लाह का तो वो भी बड़ा है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि अबू बकर कितना लेकर आए थे। ये पता है कि अबू बकर सारे घर का सामान ले आए, और वल्ला ही आज की जुबान में मैं कह सकती हूँ कि अबू बकर के सारे घर का सामान आपकी मेरी एक छोटी सी क्लोजेट के बराबर भी नहीं होना। लेकिन उनका नाबीना बाप गवाही देता है कि अबू बकर जब तबूक के मौके पे अपने घर का सामान लेके जा रहा था, तो दीवारों पे छड़ियां मार मार के झरियों में से देख रहा था कि कोई चीज छुपी भी तो नहीं रह गई। हम कहते नमाज पढ़ ली और क्या, बस 10 हजार का चंदा दिया। मौलवियों को तो आदत है लेने की, अब अगले रमजान में आना, ये मौलवी को आदत नहीं है, ये मेरी जरूरत है। जब कोई बंदा आपको मुझे नेकी की किसी प्रोजेक्ट की बात करता है ना, तो असल में वो मेरे लिए आपके लिए एक अकाउंट खोलता है कि भाई ये मेरे पास एक ऑप्शन आई है, आप भी इस पैसा डालें। हमें तो शुक्र गुजार होना चाहिए इन मौलवी हजरात का, इन मदरसा हजरात का, और इन सोशल वर्क करने वालों का, और कम्युनिटी वर्क करने वालों का, कि ये हमारे इस माल को जहां विदा करवा रहे हैं। बात समझ रहे मेरी? دین کے لیے تڑپ اور درد پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا خلاصہ. آپ اپنی ایک دعوت کے اوپر 10,000 لگا دیں، ایک شادی پہ آپ 10 لاکھ کا کھانا کھلا دیں، آپ ایک پوری شادی 1 کروڑ میں لے آئیں، اللہ آپ کو مبارک کرے. بٹ ایمان والا یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین غریب اور میں امیر، اللہ کے گھر کی ٹوٹی کرسیاں اور میرے لانچ میں ہر 2 سال 3 سال کے بعد ایک برانڈڈ فرنیچر آتا ہے. ابو بکر کو بھی یہ سمجھ تھی. دیکھیے ابو بکر کی ہجرت کی رات پہ میں بات ختم کرتی ہوں. ابو بکر ڈے 1 کے مسلمان، ٹھیک ہے، ہر دین کا ریچول ان کے سامنے آیا، رائٹ، نماز ان کے سامنے فرض ہوئی، روزہ ان کے سامنے، اور حرام ہوتی گئیں چیزیں. اللہ کے نبی کی گواہی بھی موجود ہے کہ جس پہ بھی میں نے دین پیش کیا اس نے ذرا سوچا سوائے ابو بکر صدیق کے. اور دوسری گواہی بھی موجود ہے ابو بکر کے حق میں کہ میں سب کا حق دے چکا لیکن میں ابو بکر کا حق نہیں دے چکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں گواہیاں، اگر آپ صرف ابو بکر کے خصائص پہ بات کروائیں تو 2-3 گھنٹے چاہیے. اس کے باوجود سوچئے، ایک دفعہ کر لیا بہت نہیں تھا، دوسری دفعہ کر لیا بہت تھا. مکہ کے ابتدائی دور میں اپنا جسم پیش کر دیا، جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تو ابو بکر ڈھال بنتے، اور ان ظالموں نے اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے. جب اٹھا کے گھر میں لائے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ہوش آیا تو میرے باپ کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پھر ادھر لے جاؤ، پھر ادھر لے جاؤ. اور جب لے کے گئے تو کیا کہتے ہیں، تک تلو نہ رجول یقول ربی اللہ، لوگوں ایک بندے کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس طرح حضرت ابو بکر کی لٹے نکلتی تھی، انہوں نے بال کھینچے کہ جڑوں سے بال اٹھ گئے. ہے پوری بات کا خلاصہ، یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ آج میں نے کیا سیکھا، تو وہ میں عرض کرنا چاہوں گی. الحمدللہ آپ لوگ ایک روح تو لے چکے. جو چیز میں دینا چاہتی تھی وہ یہی تھی کہ نمازیں پڑھنے کے بعد ہمیں دین کا درد بھی پیدا کرنا ہوگا. صرف چند سوال خود سے پوچھئے ہر ایک. مجھے اکثر کیا فکر ستاتی ہے، میرے کیا غم ہیں، میری دعائیں کیا ہیں، میری سوچیں کیا ہیں، میرے تفکرات کیا ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اکثر ہم اپنے ہی ذاتی غموں میں مگن رہتے ہیں؟ کبھی ایک بچے کی خوشی تو دوسرے کا غم، ایک کا اندیشہ، ایک کی اچھی بات تو دوسرے کی نہیں، ایک کا بچہ ہو رہا ہے تو دوسرے کی شادی ہو رہی ہے تو منگنی ہو رہی ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں. لیکن یاد رکھیے، نماز پڑھنے والا یعنی مومن ذاتی غموں سے اوپر اٹھ کر ایک بہت بڑے غم میں جیتا ہے، اور اس کا غم یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بعد کیا چھوڑ کے جاؤں گا. اگر آج میں دنیا سے چلی جاؤں تو میں نے اس سوسائٹی کو کیا دیا؟ قرآن پاک میں آتا ہے فم ما ینفع الناس فیمکث، سورہ رات میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا. آج اگر امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ہے، امام مسلم کا نام ہے، چاروں آئمہ کرام کے نام ہے، نیوٹن کا نام ہے، شیکسپیئر کا نام ہے، تو آپ دیکھیں یہ سب اپنے اپنے دور میں بہترین کام کر کے گئے. تو آج کا یہی خلاصہ ہے ہمارا کہ میں نے اپنی ذاتی عبادات کے بعد میں نے اجتماعی کام کرنے ہیں. اور ہمیں امت مسلمہ کا تو اتنا بڑا کام دے کے اللہ کے نبی بھی گئے کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس. تو اپنی ذاتی زندگی سے اوپر اٹھیں، فرائض کی حد تک رہیں، ذمہ داریاں پوری کریں. بچوں کی شادیاں کر دیں الحمدللہ، اللہ ان کے کام کرواتا رکھے گا. بیٹوں کو جاب نہیں ملی، مل جائے گی. بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوئے، ہو جائیں گے. ان کے بچے نہیں ہوئے، ہو جائیں گے. ان کے شوہروں کے کام نہیں اچھے، ہو جائیں گے. واللہ ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا، ہم رہیں نہ رہیں یہ کام ہوگا. لیکن یہ فکر لگائیں کہ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہے. امت مسلمہ کا کیا ہوگا؟ دن بدن آپ دیکھیے کہ ہم اپنے اسلام سے دور دکھتے ہیں، دشمنوں کی نظریں ہم پہ ہیں. ساری دنیا میں سب سے کٹھن رولز مسلمز کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم آج وہ کردار کھو گئے. آج ہمارے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ خدا تجھے وہ جدت کردار دے، یعنی آج ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے. فرشتے آج بھی تیری مدد کو اتر سکتے ہیں آسمان سے، لیکن کردار پیدا کریں. تو اپنی زندگی میں یہ درد پیدا کریں کہ میں نے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ کی سوچیں میرے پاس کیا ہے، اس کو کیسے لگاؤں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے یہ درد اتنا دیا کہ ایک ان پڑھ عورت بھی اپنے بچے کو لے کے آ جاتی تھی کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میرا بچہ لے جائیں. کہا یہ بچہ کیا کرے گا، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا. کہنے لگی کہ جب دشمن کے تیر آپ کے پاس آئیں گے تو اس کو ڈھال بنا لیجئے گا. یہ لڑ تو نہیں سکتا لیکن یہ ڈھال تو بن سکتا ہے کہ میرے بچے کے سینے میں تیر چلا جائے لیکن اسلام کے سینے میں نہ لگے. یہ سوچ کون دیتا ہے؟ ایک عورت اپنی چٹیا کے بال کاٹ کے لے آتی ہے، ये क्या? कहा जब आपकी घोड़े की रस्सी टूट जाएगी तो उसकी जगह मेरे बाल बांध लीजिएगा ताकि मेरे ये बाल अल्लाह के रास्ते में लग जाएं। आज हमें इस दर्द की जरूरत है, काम बहुत है। वो कहते हैं ना कि वक्त है फुर्सत कहाँ है, काम अभी बाकी है। दुनिया में तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। सारी दुनिया में इस्लाम का नाम हमने फैलाना था, हमने लोगों को कुफर से इस्लाम पे बुलाना था, निफाक से इस्लाम पे लाना था। क्या हम सिर्फ जाती जिंदगियों में रहेंगे? मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम तो घर घर खेल रहे हैं। बचपन में खेलते थे, ये गुड्डा ये गुड्डी, तेरी गुड़िया उसकी गुड्डी, उसकी शादी उसकी। क्या सोचे आज 40 50 60 70 80 साल जिसकी जो भी उम्र है, क्या अभी तक हम गुड़िया गुड्डों के खेल नहीं खेल रहे? हर वक्त ये तस्वीरों पे क्यों? अल्लाह मेरे बच्चों को अच्छा कर दे, बच्चों को अच्छा कर दे, उनका रिस्क अच्छा हो जाए, उनको खुला रिस्क दे। दे दिए अल्लाह ने, खुला ईमान मांगे, रिस्क की फरावानी के साथ ईमान की फरावानी मांगे, जज्बा जिद्दोजहद मांगे, कुछ करे। मेरे बच्चे तेरे दीन के लिए खालिस हो। अब ये दुआएं मांगनी छोड़ दीजिए। हाँ, इनके छोटे घर है, बड़े घर हो जाए, हो भी जाएंगे तो क्या, खुशी नहीं मिलती। आखिरी बात यह है, सच्ची खुशी आज भी उसको मिलेगी जो अपने जाती सारे गमों को एक तरफ करके एक गम अपने दिल में लगा ले कि अल्लाह मैंने तेरे दीन के लिए कुछ करना है और अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे। इसी चीज़ का रिमाइंडर दिन में 5 बार हमें नमाज की सूरत में मिलता है। और इस वक्त अगर जितने मुस्लिम्स को अल्लाह ने रिसोर्सेज दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इन सब को हर मुमकिन तरीके से यूज़ करें तो गैर मुस्लिमों तक हमारा पैगाम जैसे पहुँच सकता है। अपने वो लोग जो इस्लाम पे हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ कि गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो चेंज आती है, मुसलमान कुरान को कबूल करेगा तो चेंज आएगी। तो यही मैसेज है कि आप कुरान कहीं ना कहीं से सीखें, पढ़ें, फिर उस आपके अंदर कुछ करने की तड़प पैदा होगी। जिस दिन ये तड़प आ गई उसके बाद आपको अपनी दुनिया की कोई चीज़ रुकावट नहीं दिखेगी, बल्कि आप कहेंगे कि मेरे लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि मैं अपने सारे काम अल्लाह के सुपुर्द करूं और मैं अल्लाह के रास्तों में लग जाऊं। कुरान में आता है कि जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي يا الله يا رحمن يا رحيم ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں بہترین طریقے سے کرنے والا بنا یا اللہ سب ساتھیوں کی جائز خواہشات اپنی رحمت سے پوری فرما جو جس کے دل میں چھپی ہوئی بات ہے یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے پورا فرما بیماروں کو صحت اور عافیت دے جو بچوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جن کے بچے یا جو خود بن بیاہے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک جوڑ ملا دے اور یا اللہ جو اپنے گھروں کے ہیں ان شوہروں اور بیویوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے یا اللہ اس مسجد پہ اپنا رحم فرما یا اللہ جو بھی اس کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں اور جو بھی جہاں جس کام کی کام کرتا ہے یا اللہ ان کو قبول فرما ان کی زندگیوں میں برکت دے صحت اور عافیت عطا فرما تندرستی کا معاملہ کر یا اللہ ہماری نمازیں صرف ہماری ذاتی ہی نمازیں نہ بن جائیں ان کو ایک اجتماعی رخ دے یا اللہ ہمیں دین کا درد دے یا اللہ ہمیں دین کی وہ سچی طلب لگ جائے کہ جو طلب پھر انسان کو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے یا اللہ تو نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کو ہماری ذات کے ساتھ ساتھ اپنے دین پہ لگوا یا اللہ ہمارے دل سے اس دنیا کی محبت کو کم کر کے اس کی جگہ تیرے دین کی محبت ڈال دے یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یہاں کے رہنے والوں پہ رحم فرما یا اللہ ہمیں فحش اور منکر سے بچا یا اللہ بے حیائی کے طوفان سے بچا بے دینی سے بچا یا اللہ ہماری نسلیں ایک غیر مخصوص خطرے کی طرف دھکیلی جا رہی ہیں یا اللہ ابھی وقت پڑھنے سے پہلے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ماؤں کو توفیق دے کے ایسے کردار پیدا کریں ایسے بچے بنائیں کہ جو امت مسلمہ کا رخ موڑ دیں یا اللہ جس نے جہاں کبھی دعاؤں کے لکھا ان کو ہماری دعائیں لگا دے یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما یا اللہ ہم سب کے عزیز و اقارب پہ اپنا رحم فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ ان کے ماں باپ اور ہمارے ماں باپ کے بھائی بہن اور یا اللہ ان کی نسلیں سب پہ اپنا رحم فرما یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کو بخش دے اور یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے حصے کا کام کر کے جائیں حسرت کی موت سے بچانا یا اللہ ہمیں जन्नत में जाने के बाद ये गम ना लग जाए कि अगर हम दुनिया में थोड़ी सी कोशिश करते तो हम जन्नत के आला दर्जों को पा लेते। या अल्लाह, हमें दुनिया में तूने इतनी नेमतें दी हैं, या अल्लाह हमें जन्नत की भी आला तरीन नेमतें अता फरमाना, या अल्लाह वहाँ की महरूमी से बचाना। और या अल्लाह, जिसने भी इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और जो भी बात में सुनेंगे और जहाँ भी बात होगी, या अल्लाह उन सब की ख्वाहिशात को, जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। और या अल्लाह, हमें तौफीक दे कि हम तेरे नाम को बुलंद करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर दे। और या अल्लाह, हमारी बात में असर पैदा फरमा। या अल्लाह, हम जो दूसरों को कहें, हमें सबसे पहले खुद उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो भी इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ तक लाने का सबब बने, या अल्लाह, जिन्होंने एक लफ्ज़ से भी मदद की, या अल्लाह, तो अपने खजानों से उनको बेहतरीन अता फरमा। और या अल्लाह, जिनके बच्चे बिन ब्याहे बैठे, उनको नेक कदरदान बीवियाँ अता फरमा। और या अल्लाह, टूटते घरों को टूटने से बचा। और या अल्लाह, हमें जिद्दते किरदार अता फरमा। या अल्लाह, ईमान की बुलंदियाँ अता फरमा, अखलाक के आला दर्जे अता फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क की हालत संवार दे। या अल्लाह, मेरा दिल करता है कि हम ऐसा पाकिस्तान देखें कि जिसको देख कर दूसरे लोग भी हैरान रह जाएं। या अल्लाह, हमें यहाँ की गंदगी को दूर करने वाला बना। या अल्लाह, जहनी गंदगी और रूहानी गंदगी को दूर करने वाले बने। या अल्लाह, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जाती खुशियों गमों को कम करके हमें इज्तमाही तौर पर एक उम्मत बन के जीना पड़ेगा। अरे अल्लाह, हमें इसकी तौफीक अता फरमा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन सुभान।